यशवर्धन ने बातचीत के लिए राघवेंद्र को अंदर बुलाया। त्यागी जी के कहने पर राघवेंद्र भी बात करने के लिए उसके साथ आ चुका था। उसके अंदर आते ही यशवर्धन ने कमरे का दरवाजा बंद किया। लगता है तुम हमें सपोर्ट करने का मन बना चुके हो। इस तरह बंद कमरे में ये बात कबूल करने की क्या जरूरत थी कि तुम हमसे डर गए हो, राघवेंद्र ने आत्मविश्वास के साथ कहा। तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तुम्हें हर बार मात दे देता है। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे डर गया हूं या अपने कदम पीछे ले रहा हूं, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया है, यशवर्धन ने गंभीर भाव के साथ कहा। राघवेंद्र उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यशवर्धन ने उसे किस वजह से यहां बुलाया होगा। हम जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे होंगे। डोंट वरी, हम एक एक करके सबका जवाब देंगे, यशवर्धन ने मुस्कुराकर कहा। देखो, ये अपने सवाल जवाब का खेल तुम बाद में खेलना, अभी हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और त्यागी जी हम दोनों का ही नाम ऑफिशियल करने वाले हैं। अब साइड हटो और जाने दो, कहकर राघवेंद्र वहां से जाने लगा। यशवर्धन जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हें हर बात की इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है राघवेंद्र प्रताप सिंह? हमने तुम्हें इतने इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बुलाया है, इसका मतलब बात जरूरी होगी ना? यशवर्धन कुछ बताने के बजाय बातें बनाए जा रहा था। राघवेंद्र को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। देखो, हम कह रहे हैं हमारा रास्ता छोड़ो, तुम्हारे पास फालतू टाइम होगा, हमारे पास नहीं है। इतनी बेचैनी, इतनी तड़प किस लिए राघवेंद्र प्रताप सिंह? यशवर्धन ने हंसकर कहा। उसका ये बर्ताव राघवेंद्र को गुस्सा दिला रहा था। राघवेंद्र ने अपने कुर्ते के पॉकेट में से रिवॉल्वर निकाली और यशवर्धन के माथे के बीचों बीच रख दी। बेचैनी और तड़प दोनों एक ही झटके में निकाल देंगे, हमारी भी और तुम्हारी भी। अच्छा ठीक है, बताते हैं, यशवर्धन के कहते ही राघवेंद्र ने अपनी बंदूक वापस अंदर रख ली। यशवर्धन ने वो फाइल और टेप निकाला। मीटिंग रूम होने की वजह से वहां पर प्रोजेक्टर और बाकी की व्यवस्था मौजूद थी। यशवर्धन ने वो टेप चला दी। राघवेंद्र उसे देखकर हैरान था। उस टेप में सुंदरी ताई की हवेली से लेकर राघवेंद्र की पार्टी तक की सारी रिकॉर्डिंग थी। कैसी लगी फिल्म, यशवर्धन ने हंसकर पूछा। वैदेही, राघवेंद्र गुस्से में जोर से चिल्लाया। हाँ सही कहा, इन सबका क्रेडिट वैदेही जी को जाता है। सच कहें तो काफी बहादुर हैं। सोच रहे हैं उनसे शादी कर लें ताकि आगे भी आप जैसे लोगों से निपटने में दिक्कत ना हो। शादी तो तब करोगे ना जब वो जिंदा बचेगी। ये सब सपने अब जेल के अंदर से लेना राघवेंद्र प्रताप सिंह, ये तो बस ट्रेलर है, पूरी मूवी अभी भी मौजूद है। बोलते हुए यशवर्धन ने मेहुल वर्मा का वीडियो निकाला जिसमें वो रिपोर्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुल्हाड़ी पर मिले निशान की फॉरेंसिक जाँच की रिपोर्ट पढ़ रहा था। वो सब देखकर राघवेंद्र ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारा। उफ, हमें पहले ही लगा था कि आप इसी तरह से गुस्सा करेंगे और फिर अपने हाथ पैर मारेंगे, यशवर्धन ने कहा और पानी का ग्लास उठाकर राघवेंद्र की तरफ बढ़ाया। ये लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, इससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा ताकि आप सोच समझकर डिसीजन ले सकें। गुस्से में राघवेंद्र ने वो पानी का ग्लास फेंक दिया। क्या चाहते हो तुम, उसने पूछा। अरे वाह, बिना पानी पिए ही आपका दिमाग काफी अच्छे से काम कर रहा है। हाँ तो क्या पूछा आपने कि हम क्या चाहते हैं, बोलते हुए यशवर्धन चहलकदमी करते हुए सोचने लगा। फिर वो रुका और राघवेंद्र के पास आकर बोला, ज्यादा कुछ नहीं, इस बार के लिए हमें मुख्यमंत्री बनने दो। हम अच्छे से जानते हैं कि आधे से ज्यादा विधायकों को तुमने खरीद लिया है। तुम अपने कदम पीछे ले लोगे तो हम निर्विरोध मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम ये करने वाले हैं, राघवेंद्र ने पूछा। तुम्हें पता है मैं वैदेही जी को बड़ी मुश्किल से रोक कर आया हूँ। अरे वो तो तुम्हारा प्राइम शो चलाने वाली थी, अब तुम मेरे पुराने दोस्त थे तो सोचा पहले आकर तुमसे बात कर लूं। मैं वादा करता हूँ कि अगली बार तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट होगा, लेकिन इस बार मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो फिर से वही विधायकों की लंबी लाइन लग जाएगी। मेरी बारी आएगी, इतने में तो मैं त्यागी जी से भी बूढ़ा हो जाऊंगा। जाओ, राघवेंद्र ने हंसकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो शो चलवाना है चलवा सकते हो, मैं अपने कदम कभी पीछे नहीं लूंगा। तुम अगली बार की बात करते हो, मेरे होते हुए तुम्हारी बारी जिंदगी भर नहीं आएगी। एक बार मैं मुख्यमंत्री बन गया, उसके बाद मैं किसी की बारी आने ही नहीं दूंगा। ठीक है, फिर वैदेही जी के शो से पहले ये सारे सबूत तुम्हारे घर पहुंचेंगे, उन्हें तुम्हारी आई और तुम्हारा प्यारा छोटा भाई मानव देखेगा। तुम्हें फर्क पड़े ना पड़े, मानव को जरूर पड़ेगा। हम तो पहले से ही जानते हैं कि तुम कमीने हो, लेकिन वैदेही जी इस मामले में कच्ची निकलेंगी ये कभी नहीं सोचा था, राघवेंद्र गुस्से में चिल्लाया। हम तो अपने कदम पीछे खींच लेंगे, लेकिन वैदेही वंशी को क्या समझाओगे? तुमने ये सबूत हमें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किए हैं, उन्हें पता चला तो कहीं हमारे बजाय तुम्हारा प्राइम शो ना चाहे। अब हमारी होने वाली पत्नी को कैसे समझाना है ये हम तुमसे बेहतर जानते हैं, यशवर्धन ने मुस्कुराकर कहा। राघवेंद्र उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। इसमें इतना चौंकने जैसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो, हम तुम्हें भी हमारी शादी में बुलाएंगे, हमें तुम्हारी बकवास और नहीं सुननी। अब सीधे सीधे बताओ कि आगे क्या करना है, राघवेंद्र ने पूछा। करना कुछ नहीं है, बस जाकर त्यागी जी से बोल दो कि हम यशवर्धन को सपोर्ट कर रहे हैं, अगली बार हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस बार यशवर्धन को आगे आने दे। उन्हें जाकर कहो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्विरोध मुझे मुख्यमंत्री बनाने की बात कहे। यशवर्धन ने उसे पूरी बात समझा दी। ठीक है, हम बोल देंगे, बदले में हमें अच्छा सा मंत्री पद मिलना चाहिए। और हाँ, हमें ये सबूत, यशवर्धन राघवेंद्र की बात काटते हुए बीच में बोला, मंत्री पद की चिंता तुम मत करो, और रही बात सबूतों की तो हम मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सबूत तुम्हें सौंप देंगे। तुम जमीन के अंदर रहने वाले वो सांप हो जो किसी को कभी भी काट सकता है, हमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जान सकता यशवर्धन सिंह, इसके बावजूद हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। अगर हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो हमारे आदमी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। ये गलती कभी मत करना। इस सबूत की और भी कॉपीज मौजूद हैं। अगर हमें कुछ हुआ तो फिर बचोगे तो तुम भी नहीं। राघवेंद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में बाहर आ गया। वो त्यागी जी के पास जाकर धीमी आवाज में बोला, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। राघव, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, तुम लोगों की जरूरी बातें अभी खत्म नहीं हुई क्या? त्यागी जी नाराज होकर बोले, ये सब अकेले में निपटाते हैं, आप आइए तो सही। राघवेंद्र जबरदस्ती त्यागी जी को मीटिंग रूम में ले आया। यशवर्धन वहां से जा चुका था। अंदर आते ही राघवेंद्र ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। हमने कभी सोचा नहीं था कि वो किस हद तक गिर जाएगा। त्यागी जी गुस्से में बोले, आपने नहीं सोचा था लेकिन हम पहले से ही पूरा इंतजाम करके बैठे थे। ठीक है, इस बार बनने दीजिए उसे मुख्यमंत्री, हम अच्छे से जानते हैं कि उससे कैसे निपटना है। तुम भले ही इस विषय में कुछ न करो लेकिन हम यशवर्धन से बात करके रहेंगे। हमारी नाक के नीचे वो इतना बड़ा प्लान बनाकर बैठा था और हमें खबर तक नहीं हुई। जाने दीजिए त्यागी जी, अभी के लिए उसे मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए। उसकी आंखों के सामने से उसकी सबसे प्यारी चीज को छीन कर ले जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा, राघवेंद्र ने गुस्से में कहा। अपनी बात कहकर राघवेंद्र वहां से जा चुका था। त्यागी जी ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी जहां त्यागी जी सबके सामने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों का नाम घोषित करने वाले थे। पार्टी के लोगों को यशवर्धन और राघवेंद्र के बीच हुई गहमागहमी के बारे में कुछ पता नहीं था। राघवेंद्र का नाम लिए जाने वाला है, कहाँ गया वो? राघवेंद्र पर समर्थन करने वाला एक नेता उसे इधर उधर ढूंढ रहा था।
उससे क्या फर्क पड़ता है गुप्ता जी, बैठा होगा कहीं पर गुंडागर्दी करने, माया देवी ने तीखे शब्दों में कहा। त्यागी जी सबके सामने आए और मुख्यमंत्री पद का ऐलान करते हुए कहा, हमें ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हर बार की तरह इस बार भी हमारी पार्टी एकमत पर है। जैसा कि हम कहते हैं कि हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं, उसी तरह हमारी पार्टी भी एकता में विश्वास करती है। समय गवाह है कि जब जब महाराष्ट्र पार्टी की जीत हुई है तब तब निर्विरोध मुख्यमंत्री चुना गया है। इस बार भी सबकी सहमति के साथ निर्विरोध मुख्यमंत्री चुनते हुए हम लोग यशवर्धन सिंह का नाम आगे करते हैं। बाकी चुनाव आदि की औपचारिकता सदन में हो जाएगी। इसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पार्टी के बाकी सदस्यों की तरह मीडिया के लोग भी हैरान थे। उन्हें यशवर्धन के साथ राघवेंद्र के नाम लेने की उम्मीद थी, लेकिन सर हमने तो सुना था कि इस बार राघवेंद्र प्रताप सिंह भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनने वाले हैं, फिर उनके कदम पीछे लेने का कारण क्या है? एक रिपोर्टर ने पूछा। हमने कहा ना, हम एकता में विश्वास रखते हैं, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने में यकीन करते हैं, ना कि टांग खींचकर पीछे लाने में। इसी के साथ आपको आपके बाकी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे, प्रणाम। इसी के साथ त्यागी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया। यशवर्धन को पूरी सिक्योरिटी के साथ ले उसके बंगले में ले जाया गया, जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले वो सिक्योरिटी के साथ अपने घर में बंद रहने वाला था। उसके जाने के बाद पार्टी के लोग त्यागी जी पर सवाल खड़े करने लगे। ऊपर से राघवेंद्र भी वहां पर मौजूद नहीं था तो सब लोग हैरत में थे। आप इतना बड़ा खेल खेल गए त्यागी जी, और आपने हमें बताया तक नहीं। अरे, राघवेंद्र ने खुद को वोट देने के लिए हमें मोटी रकम चुकाई है, वो इस तरह वो पीछे कैसे हट सकता है? एक विधायक चिल्लाते हुए बोला। देखिए, हम जानते हैं कि हमने आपसे बिना सलाह मशवरा करे यशवर्धन का नाम सामने रख दिया, लेकिन ये फैसला खुद राघवेंद्र का था। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में बस कुछ ही मिनटों का समय रह गया था, इसलिए हमें बताने का वक्त नहीं मिला, त्यागी जी ने सफाई दी। अगर ऐसा ही है तो राघवेंद्र यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? माया देवी बोली। उसे किसी काम की वजह से जाना पड़ा, जब वो आए तो आप लोग खुद बात कर लेना। हाँ, इसकी एवज में राघवेंद्र को मंत्री पद में सबसे महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा और अगली बार निर्विरोध राघवेंद्र को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, त्यागी जी ने जैसे तैसे करके उनको समझा दिया था। दूसरी तरफ पार्टी ऑफिस में यशवर्धन के साथ हुई बहसबाजी में राघवेंद्र बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अपनी गाड़ी को तेज गति में सड़क पर दौड़ा रहा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया यशवर्धन, वैदेही के दम पर तुमने मुझे ये जो मात दी है उसका जवाब तुम्हें अच्छे से मिलेगा। जिस वैदेही के दम पर तुम इतना उछल रहे हो उसका वो हाल करेंगे कि जिंदगी भर मुख्यमंत्री बनने का अफसोस मनाओगे, राघवेंद्र ने गुस्से में कहा। मुख्यमंत्री का पद छिन जाने की वजह से राघवेंद्र बुरी तरह बौखला चुका था। उसकी गाड़ी वैदेही के अपार्टमेंट में खड़ी थी और कदम तेज गति से वैदेही के फ्लैट की तरफ बढ़ रहे थे। डॉट डॉट डॉट